Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप आध्यात्मिक हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, आप श्रवण मनन कर रहे हैं, तो आपके साधन की अवस्था है। आपको परोक्ष ज्ञान हो गया, अब आपको तत्व का परोक्ष ज्ञान हुआ, आपने ब्रह्म के बारे में सुना, आपने अपने बारे में भी सुना। क्या सुना? तत्वमसी। आपने अपने बारे में सुना कि तुम बाहे हो, ये अपनी खबर अपने को मिली, ये अपने को सूचना मिली कि भैया हम कौन है। हमने अपने बारे में भी सुना कि हम वही हैं, ये परोक्ष ज्ञान है। और संसार के बारे में भी सुना, ये संसार मिथ्या है, मिथ्या। आप श्रवण करते ना, ये तीन सूत्र हैं वेदांत के सर्वोच्च सूत्र, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। ये परमात्मा की खबर है, ब्रह्म सत्यम परमात्मा के बारे में, और संसार के बारे में कहा कि ये मिथ्या, और आपके बारे में कहा कि जीवो ब्रह्मे बना पर आप वही हैं, वही ब्रह्म है। ये तीन चीजें आपने सुनी, और सुनने के बाद आपको ज्ञान हो गया ना। ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, फिर कभी बताऊंगा परोक्ष ज्ञान क्या है। ये परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान माने आपने सुना और आपको ज्ञान हुआ, ये परोक्ष ज्ञान है। श्रवण मात्र से, श्रवण जन्य जो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान। आप परोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर धीरे 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 आपने उसको बढ़ाया, उसको आपने चिंतन किया, मनन किया, बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, धीरे 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 फिर आपको वो ज्ञान आपका अनुभव बन गया, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। आपको अपरोक्ष का मतलब समझ गए ना, हमारे जीवन में ब्रह्म की सत्यत्व का बोध हो गया। ब्रह्म सत्यत्व माने ये त्रयकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, ये तीनों कालों में जो बाधित नहीं होता, जिसमें कोई रूपांतरण नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, जिसमें कोई नाश नहीं, उसको बोलते हैं सत्य। अनुभव में आ गया, सत्य का अनुभव हुआ, प्रत्यक्ष में आ गया। अब आपको कोई बोले कि सत्य क्या, तो आपको ले आओ, भगवान को छोड़कर दुनिया में अब कोई सत्य चीज नहीं है। और संसार का अनुभव क्या हुआ, ये मिथ्या है। ये आपके जीवन में दो प्रकार का वैराग्य, ज्ञान पूर्व में और ज्ञान के बाद में भी। आपको पहले भी वैराग्य होता है, श्रवण मनन करने के लिए भी तो वैराग्य चाहिए। आपको गुरु के पास जाना है तो आप वैराग्य के बिना जाएंगे क्या? आपके लिए श्रवण के लिए भी वैराग्य चाहिए, लेकिन आपको बाद में ये ज्ञान हुआ कि सारा संसार मिथ्या है, और उसके बाद भी आप में वैराग्य हो जाता है। इसलिए ज्ञानोत्तर काल का वैराग्य स्थायी होता है, वैराग्य हो गया। या अपरोक्ष, मैं आपको एक घटना सुना देता हूं, अपरोक्ष का अर्थ क्या है। आप जा रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, और आपके सामने एक चीज पड़ी हुई आपको मिली, और वो कंकन था, सोने का कड़ा था। आपने कड़े को देखा और सोने की चीज, और इस समय तो सोना बड़ा महंगा है ना? अब आप क्या करोगे उस सोने के कड़े को देख, ईमानदारी से अब आप प्रेम पूरी में आए तो यहां तो ईमानदारी चलेगी, चोरी भी करो तो थोड़ा ईमानदारी से। आपके सामने सोने का कड़ा गिरा पड़ा है, आपको मालूम है कि निश्चित सोना, तो आप क्या करोगे ईमानदारी से, क्या करोगे आप? मैं आपको बेईमान नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं ही देख रहा हूं आपकी गर्दन हिल रही कि नहीं, आपके बगल वाला थोड़ी देख रहा है। आपके जीवन का एक सूत्र है, आपके जीवन में सबसे पहला जो भाव होता है वो सत्यत्व बुद्धि, और सत्यत्व बुद्धि के बाद दूसरे नंबर पर महत्व बुद्धि, चौथे नंबर पर संकलन की मनोवृत्ति, पांचवें नंबर पर प्रवृत्ति, और छठे नंबर पर स्वीकृति। आप फिर सातवें नंबर पर क्या करोगे, आप अपने कड़े को, उस कड़े को उठा करके आप अपने पर्स में रख लोगे, उसमें सत्यत्व बुद्धि है, मालूम पड़ा ये सत्य है, और उसके बाद आपके मन में उसके प्रति महत्व बुद्धि जुगी, ओ सोना है सोना, महत्व बुद्धि बनी, और उसके बाद संकलन की मनोवृत्ति में उठा लूं क्या, उठाऊं क्या, फिर आप उठाएंगे नहीं, उसके बाद आसपास लोगों को देखेंगे, आप कोई देख तो नहीं रहा है। और उसके बाद प्रवृत्ति, और प्रवृत्ति के बाद फिर आप उसको उठा के अपने पर्स में रख लेंगे, और उसके बाद क्या होगा, आप घर में आएंगे और रात भर सोएंगे कि नहीं, आप रात भर सोचते जाएंगे ओ कितना होगा ये, हा? सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि ये कितना होगा, 100 ग्राम है 200 ग्राम है, हा? कितना तोले का, ये सोचेंगे आप, आपका मन तोलता रहेगा, हो सकता है हाथ में भी लेके आप उठ उठ के देखेंगे वो कितना है कितना है कितना है। महीनों गुजर गया, महीनों, मैं अब नाम नहीं बताऊंगा, अपने यहीं की घटना है, इसी अपने इसी समुद्र के किनारे की घटना है, एक कोई नौकरानी थी और वो गई घूमने के लिए पार्क में, और उसको नारायण एक हार मिला, सच्ची घटना है, हार मिला उसको, वो सोने का हार, बड़ा कीमती हार, और वो नेपकिन में बंधा हुआ था। अब वो बेचारी सोची कि मैं रात भर सोई नहीं कि ये कितने का होगा क्या होगा, वो गरीब थी वो बंगाली, अब वो सोचती गई कि क्या होगा कितने का होगा, मैं फिर इसको बेचूंगी, मैं फिर ये खरीदूंगी, मैं नाक का खरीदूंगी, कान का खरीदूंगी, और क्या क्या सोच रही थी वो। दूसरे दिन वहां गई जहां सत्संग चल रहा था, वहां एक आदमी थे ट्रस्टी, वहां के मेन, नाम नहीं बताऊंगा पहले कह रहा हूं मैं, और उन्हें क्या बोला कि ये आप थोड़ा देखिए तो, और इसको आप थोड़ा बता दीजिए है क्या चीज है कितने का है, भरोसा था उसके ऊपर। उसके बाद वो श्रीमान जी घर ले गए, और एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन बीता, वो बात ही न करे। फिर एक दिन उन्होंने पूछा कि भैया वो क्या हुआ, अरे बोले वो तो ऐसी चीज है, बोले वो ऐसी चीज है। तो उन्होंने कहा ऐसी चीज है तो हमको वापस तो कीजिए, कहां है, अरे बोले वो रखी थी टेबल पर, पता नहीं कौन उठा के ले गया। अब वो खूब रोई, बोली अरे बोले तो सही चीज थी, और वो सही नहीं होती तो कहां कोई उठा के ले जाता, घर से कौन ले जाता, छोड़ो बात, हा? बहुत दुखी हुई, बाद में हमको भी सुनाया। फिर उन्होंने 5,000 रूपये दिया, उन्होंने बड़ा उदार मन से 5,000 रूपये नमकर उठा के ले, देखो कैसे कैसे लोग है वहां, अन्ना हजार है, यही तो कह रहा है और क्या कह रहा है। सब जगह पर है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी तो है। आपको कड़ा मिला वो सोने का कड़ा, और उसके बाद आप रात भर नहीं सोएंगे भैया, आप रात भर नहीं सोएंगे, महीनों गुजरे महीनों, आप स्वर्णकार के पास जा नहीं पाए थे, और एक दिन बड़ी प्रसन्नता से आप स्वर्णकार के पास गए, और स्वर्णकार को आपने वो कड़ा दे के पूछा कि भैया बताइए कितने का है ये कितने का है। उसने देखा, और देखने के बाद जांचने के बाद उन्होंने कहा कि भैया ये तो नकली है, ये तो पीतल है पीतल, अब मैं आपको पूछता हूं उसका क्या करोगे, अब आप ले आओगे कि वहीं बोलोगे भैया ये तुम ही रख लो, ये क्रम है। सत्यत्व बुद्धि जब तक थी तब तक उसके प्रति क्या थी, ममता महत्व बुद्धि, और जब तक महत्व बुद्धि थी ना तब तक संकलन की मनोवृत्ति थी, और अब वहां महत्व बुद्धि खत्म और संकलन की मनोवृत्ति खत्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप बोलेंगे भैया ये तुम्हें रख लो, राम राम मुझे नहीं चाहिए। इसको बोलते अपरोक्ष, समझ गए, इसको क्या बोलते हैं, अपरोक्ष इसको बोलते हैं। आपको ज्ञान हुआ ये संसार क्या है, मिथ्या है, समझ गए, आप समझना यहां इस कड़े के दृष्टांत से समझना, ये अपरोक्ष ज्ञान हो गया, ओ संसार मिथ्या है, ये आपके अनुभूति में आ गया, उसको बोलते हैं यत साक्षात अपरोक्ष। जब आदमी मर जाता है ना तो आपको वैराग्य होता है कि नहीं, आदमी बोलना शुरू करे ओहो सब मर जाते हैं, लेकिन कब तक, जब तक घर नहीं आते तब तक, उसके बाद वैराग्य तो होता है लेकिन बाद में राम राम। इसलिए नारायण अपरोक्ष का मतलब होता है ऐसा, ये दृष्टांत से समझना है, और तीसरा सूत्र आपके जीवन का है, मैं वही हूं तत्वमसी। और यहां भी अपरोक्ष यही आपको मालूम पड़ा, परम पूज्य महाराज श्री को उड़िया बाबा जी कहते हैं, वो दृष्टांत बड़ा सुंदर है। बालू हाथ में लेके, हे शांतनु, बालू का एक एक कण जब तक तुमको ब्रह्म न दिखाई दे तब तक तुम अपने ज्ञान को पूरा मत समझना। माने कण कण आपको ऐसा मालूम पड़े ये ब्रह्म है, तब क्या हो गया, अब आपको अपरोक्ष ज्ञान हो गया। अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान के बाद नंबर आता है अपरोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान के बाद शोक नाश। अब ये मोक्ष की अवस्था है, ये दो जो अवस्था है ना, ये मोक्ष की अवस्था है, शोक नाश और आनंदावाप्ति। आप बोलते हैं कि नहीं, दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। ये आभास की सात अवस्था बताई है, ये आभास की सात अवस्थाएं हैं। अब ये आभास की जो सात अवस्थाएं हैं ना, इसमें जो अज्ञान है ये आवरण है, अज्ञान का क्या है, आवरण है, और आप अंदर ब्रह्म तत्व छिपा है। जैसे बीज है ना, बीज, बीज के ऊपर आवरण है और उस आवरण को हटाना पड़ता है, तब जाके क्या बनता है, वो अंकुर बनता है, व्यक्त होता है। उसका जो वृक्ष होना व्यक्त होता है जब उसका वो ढक्कन, जब आवरण भंग होता है। ऐसे हमारे ऊपर आवरण पड़ा है, किसका आवरण है, अज्ञान का, और उसी के कारण नारायण यहाँ विक्षेप है, सारा संसार है। इसलिए शास्त्र कहता भैया आप ब्रह्म है, हाँ, या आप बोल सकते हैं ब्रह्म बनने की संभावना है, लेकिन क्या करना पड़ेगा उसके लिए, बस यही तो है, आपको आवरण को हटाना पड़ेगा। बिना आवरण हटाए आप उस तत्व की उपलब्धि को पा नहीं सकते हैं। आप जो हैं वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान के आवरण में हम पड़े हुए छिपे। इसलिए दोनों चीजें, यहां आवरण हटाना है आपको, आवरण अज्ञान आवरण और विक्षेप को हटाना है, और परमात्मा के परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान को पाना है। यहां दोनों चीजें हैं, ये दो चीजें जब घटित हो जाती हैं तो आपका तीसरे क्रमांक में नंबर है मोक्ष का। ब्रह्म तत्व की अनुभूति मोक्ष की अनुभूति है, यह अपरोक्ष ज्ञान के बाद की अनुभूति है, या दो चीजें, आप इसको तीन चीजों में विभाजित कीजिए। पहले बंधन है, अज्ञान आवरण और विक्षेप, ये तीनों बंधन है, बंधन है, बंधन, बंधन की अवस्था, और साधन की अवस्था है साधना, ये परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। यहां पुरुषार्थ है, यहां स्वीकृति है, आपको परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान को पाने के लिए वो सारी चीजें जीवन में अपनाना पड़ेगा। सारी चीजें क्या, विवेक, वैराग्य, समाधि, संपत्ति, ये सारी चीजें, और आपके ओम सहना भवतु सहनाओ भुनक्तु में सारी चीजें हैं। आप आसक्ति का परित्याग कर रहे हैं, वैराग्य को धारण कर रहे हैं, समाधि संपत्ति को जीवन में धारण कर रहे हैं, ये सारी चीजें परमात्मा से मांग रहे हैं। और उस तत्व को पहुंचाने के लिए, यहां आपको अज्ञान को काटने के लिए आपके पास ताकत चाहिए, आपके पास बल चाहिए, अज्ञान को काटने का बल और ज्ञान को पाने का बल, संसार को छोड़ने का बल, ये वैराग्य, ये बल है, ये छोड़ने का बल है, और ज्ञान को ग्रहण करने का बल। आपको कहां, आपको मोक्ष को भी पाना है तो वहां पर भी स्वीकृति के लिए और अस्वीकृति के लिए, ग्रहण के लिए, त्याग के लिए आपके जीवन में बल चाहिए। आप यहां तीनों, आप शारीरिक बल, आपका मानसिक बल, आपका बुद्धि बल, ये तीनों बल आप मांगिए। आप यहां सहवीर्यं करवा वह श्रुति कहती, आप शारीरिक बल हमको प्रदान करो। आप शारीरिक बल जब प्राप्त करते हैं तो आप अच्छी प्रकार से बैठ करके श्रवण मनन जिध्यासन कर सकोगे। आपका मन यदि मजबूत होगा तो मनन कर सकेगा, और बुद्धि आपकी बलवान होगी तो निधिध्यासन करेगा। और जब आपका तन मन और बुद्धि जब बलवान होगी तो आप में स्वीकृति का भी बल होगा, और आप में आपके अंदर त्याग का भी बल होगा। आप कुछ चीजें छोड़ेंगे भी और कुछ पकड़ेंगे, तब जा करके आप मोक्ष को पा लेंगे। इसलिए यहां दोनों बल, हाँ यहां पर दोनों छोड़ने का भी बल चाहिए और यहां पकड़ने का भी बल चाहिए। आपको कोई बोले कि भैया वो चीज गलत है, आप इसको छोड़ दो, आप क्या बोलते हैं? या छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप बोलते कि नहीं? आप बोलते हैं वहां कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। माने छोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? आप में बल चाहिए। अज्ञान को छोड़ने के लिए भी क्या चाहिए? बल चाहिए। इसलिए श्रुति कहती है सह वीर्यं करवाव है, बल के बिना आप आत्म तत्व को भी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। और अब श्रुति कहती है मा विद्विषाव है, अंतिम सूत्र है ना, चारित है ना पादेश में। श्रुति कहती है कि हम लोग किसी से भी राग द्वेष न करें। ये सामान्य प्रार्थना नहीं है। हम दिन भर न किसी के प्रति राग रखते हैं और किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, और राग और द्वेष ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा बंधन है। हम किसी के प्रति राग की भावना, राग में वस्तु सुंदर मालूम पड़ती है और द्वेष में वस्तु कुरूप मालूम पड़ती है। राग में हम देना चाहते हैं और द्वेष में लेना चाहते हैं। कितना आश्चर्य है। आपका राग है, आपका किसी के प्रति प्रेम है, तो आप क्या करते हैं? मैं इनको क्या दूं? प्रेम में देने की भावना होती है, मैं क्या दूं क्या दूं। और जहां द्वेष होता है ना, वहां दी हुई चीज को भी लेने की भावना होती है। कई बार ऐसा होता है दे तो दिया लेकिन बाद में मालूम पड़ा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, फिर कोई ना कोई बहाना मार देंगे आप और ले बोले भैया वो वापस करो वापस करो वापस करो। ये द्वेष की भावना लेने की भावना, देने की नहीं। और राग की भावना में देने की भावना आदमी जुड़ जाता है। वस्तुतः राग में भी हम जुड़ते हैं और द्वेष में भी जुड़ते हैं। राग भी चाह है और द्वेष भी चाह है। राग जुड़ने की चाह है और द्वेष अलग होने की चाह है। इसलिए भगवान ने कहा राग द्वेष वियुक्त स्तो विषयानिन्द्रियश्चरन आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। आध्यात्मिक जीवन में हो या सांसारिक जीवन में, ये राग द्वेष आदमी को बड़े दुख देते हैं। आप पड़ोस के व्यक्ति के प्रति भी राग द्वेष करोगे तो आप दुखी रहोगे आप। इसलिए भगवान ने कहा राग द्वेष को आप अलग करो और विषयों से अपने मन को हटाओ, तब जाके भगवान ने कहा आत्मवश्य ही आप स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हो। राग द्वेष वाला व्यक्ति अपने मन पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और आप यदि आत्मवशी नहीं है, आपका अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं है, तो आप कभी शांति को नहीं पा सकते। प्रसादम अधिगच्छति, भगवान कहते वो व्यक्ति प्रसाद को प्राप्त करता है। प्रसाद को आप भगवान के मंदिर में जाते हैं और आप क्या प्राप्त करते हैं? प्रसाद प्रसाद। तो यहां पर भी भगवान कहते प्रसाद उसी को मिलता है, प्रसाद जो आपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करता है, प्रसाद भी मंदिर में उसी को मिलता है। और प्रसाद का मतलब समझते हैं क्या होता है? प्रसाद तो बाह्य रूप से आप देखेंगे कोई मीठा है, कोई लड्डू है, कोई पेड़ा है, कोई मिश्री है, बाहर के रूप से तो प्रसाद है। लेकिन वास्तविक प्रसाद का अर्थ होता है प्रसादो नाम प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है स्वास्थ्य। भगवान भाष्यकार ने वहां प्रसाद शब्द का अर्थ स्वास्थ्य ऐसा किया है। हम अपने जीवन में यदि राग द्वेष में यदि है ना, तो हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? अच्छा, इसकी एक व्याख्या बड़ी सुंदर करते हैं महात्मा लोग। ये स्वास्थ्य बोलते ना, स्वस्थ स्वस्थ का अर्थ क्या है? स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ। ये स्वस्थता की परिभाषा है। स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ तस्य भावो स्वास्थ्यम्। अपने में स्थित होने का ही नाम स्वास्थ्य है और अपने में स्थित नहीं होने का नाम ही अस्वस्थ है। आप राग में, आप किसी के प्रति राग कर रहे हैं तो आप अपने में हैं कि आप दूसरे में हैं? आप किसी से द्वेष कर रहे हैं तो आप अपने में हैं कि दूसरे में हैं? अब आप अपने बारे में सोचोगे कि आप दूसरे के बारे में, तो आप स्वस्थ हैं क्या अस्वस्थ हैं? आप किसी के प्रति राग करते हैं तो आप अपने बारे में सोचेंगे कि दूसरे के बारे में, तो आप स्वस्थ हैं क्या अस्वस्थ हैं? अरे आप बहुत पहलवान हैं देखने में, आओ बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप राग और द्वेष में हैं तो आप स्वस्थ हैं क्या अस्वस्थ हैं? बड़ी मजेदार बात है। और जब आप अस्वस्थ हैं तो आप फिर शांत होंगे कि अशांत होंगे? आप किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो अपने आप राग द्वेष आपके मन की शांति को भंग कर देते हैं। आप अस्वस्थ हैं ना, फिर आप शांत और सुखी कैसे हो सकते हैं? स्वास्थ्य की एक परिभाषा है, आपको जो चीज याद आती है ना तो समझना कि वो चीज अस्वस्थ है। एक स्वास्थ्य की परिभाषा, एक सूत्र है, आपकी जो चीज याद नहीं आती है तो समझना कि वो चीज आपकी क्या है, स्वस्थ है। और जो चीज बार बार याद आती है वो चीज क्या है, अस्वस्थ है। आपके पास आपके 32 दांत है कि नहीं? हाँ, घर में तो रख के नहीं आए ना, कई बार छूट जाते हैं गलती से। आपके पास अपने 32 दांत हैं, लेकिन एक भी दांत आपको याद आ रहा है क्या? नहीं। लेकिन किसी एक दांत में थोड़ा दर्द हो जाए, 32 में से वही एक दांत आपको बार बार याद आएगा, ओ वही दांत, आपकी जीभ बार बार वही पहुंचेगी, समझ लीजिए कि अब वो दांत क्या हो गया है, अस्वस्थ हो गया। आपके पास 10 अंगुलियां हैं, अब ये 10 अंगुलियों में से कोई अंगुली आपको याद आ रही क्या? पक्का समझ लीजिए कि वो 10 अंगुलियां आपकी क्या है, स्वस्थ है। और यदि एक अंगुली ही बार बार याद आ रही तो क्या समझना, वो अस्वस्थ हो गई है। आपके पास इतना बड़ा शरीर है, 5-6 फुट, आपको याद आ रहा है? नहीं, मालूम ही नहीं पड़ रहा है। समझ लीजिए कि आपका शरीर क्या है, और यदि मालूम पड़ रहा हो तो देखना, अस्वस्थता में मालूम पड़ता है बार बार, ओहो मालूम पड़ता है, हाथ मालूम पड़ता है, पैर मालूम पड़ता है ना? मालूम होना ही क्या है, हमारी अस्वस्थता। हमारी इंद्रियां मालूम पड़ रही हैं क्या? हमारे पास पांचों इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां आपको मालूम नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप क्या है। और यदि कोई भी इंद्रिय मालूम पड़ रही है आपको तो समझ लीजिए क्या है, अस्वस्थ है। आप राग में हैं तो आपको मालूम पड़ने लगता है कि नहीं, ये राग अस्वस्थता है। आपका जिसके प्रति राग होता है वो आदमी ज्यादा मालूम पड़ता है, जिसके प्रति द्वेष होता है वो आदमी आपको मालूम पड़ता है, ज्यादा मालूम पड़ता है। आप जब करने के लिए बैठे और आप जिसके प्रति द्वेष करते हैं बार बार, अरे वही मालूम पड़ता है, बार बार वही आपके चेतना में आता है, वही आपके मन में आता है, वो बार बार आपके मन में अपने होने की सूचना देता है, और वही उसकी क्या है, अस्वस्थता। इसलिए राग और द्वेष हमारे मन की सबसे बड़ी अस्वस्थता है, क्योंकि राग और द्वेष में हमको दुनिया मालूम पड़ती है। जिसके प्रति राग द्वेष हम करते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा मालूम पड़ता है, और ये अध्यात्म के मार्ग में सबसे बड़ा प्रतिबंध है। इसलिए श्रुति कहती है मा विद्विषाव है, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं हम दोनों गुरु शिष्य श्रोता वक्ता, हम किसी से भी राग द्वेष न करे। समझ में आया कि नहीं? ये बहुत ऊंची प्रार्थना, बहुत ऊंची प्रार्थना है। आप प्रतिदिन इस प्रार्थना को दोहराइए, अर्थ के साथ दोहराइए, ओम सहना भवतु, हमारी भगवान रक्षा करो हम सबकी, हम सबका आप पालन पोषण करो, हमको बलवान बनाओ, सहवीर्यं करवाओ, हम सबको बलवान बनाओ। और मां विद्विषाव है, हम किसी से भी राग द्वेष न करे, ये बहुत ऊंची प्रार्थना है, बहुत ऊंची प्रार्थना। आप इस प्रार्थना के अर्थ को ध्यान में रख करके प्रतिदिन इस प्रार्थना को दोहराओ तो जरूर वो सारी चीजें हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी, और तब जाके ओम शांति ही शांति ही शांति ही, तीन बार शांति। अब आपके जीवन में ये तीन चार सूत्र यदि आपके जीवन में आए ऊपर वाले, तब आप कल्पना करो किसकी, शांति की। अब शांति, और एक बार नहीं बोला, आप चेतावनी देना चाहते हो तो क्या बोलते हो, तीन बार, एक दो, निश्चित होगी बात, मजबूत हो गई, अब गहरी हो गई। आप किसी भी बात को गहराई तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसको तीन संख्या का तीन संख्या को आप गिना लेते। यहां श्रुति ने लिखा अब शाश्वत शांति है। अब आपके जीवन में ऊपर के चार सूत्र आ गए, अब कोई नहीं रोक सकता है, अब शांति शांति शांति। उसका दूसरा भी अर्थ है, आध्यात्मिक शांति, अधिदैविक शांति, अधिभौतिक शांति, उसके बाद शांति शांति, और कोई अशांति नहीं है। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, और ये सूत्र दैनिक जीवन में हमारी प्रार्थना का है, इसलिए इसके अर्थ को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। अपने वाणी को विराम देता हूं, कल आप लोग कठोपनिषद का जो मूल मंत्र है अब वहां से हम शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।